महामृत्यु, जो आदमी बिस्तर पर पड़ा है और जो अंतिम श्वास गिन रहा है, यदि वो भी इस मंत्र का यदि विधिवत जप कर ले या उसके नाम से विधिवत जप हो जाए तो वो आदमी भी बिस्तर से खड़ा हो जाया करता है। जब शरीर में रोग बढ़ जाए ना, तब इस मंत्र का जप किया जाए। ये भगवान महादेव का महामृत्युंजय अमोघ मंत्र है। आज बड़े ध्यान से कथा सुनना। आज ये मंत्र किसने दिया? सनकादि ऋषियों ने मार्कंडेय मुनि को दिया। वही मार्कंडेय मुनि को जो नर्मदा पुराण की कथा युधिष्ठिर को सुनाएंगे आगे, जिनकी उम्र 5 वर्ष थी, पर इस मंत्र को दिया और कहा कि इस मंत्र का 125,000 जप करना, 1,25,000। और महाराज आज तो मार्कंडेय मुनि नर्मदा के तट पर आए। कथा आएगी नर्मदा की, जब हम करेंगे ना तो मार्कंडेय मुनि का आश्रम आएगा। और नर्मदा के तट पर आए हैं मार्कंडेय मुनि, 5-4 वर्ष के बालक, और बालुरेत की शिवलिंग बनाई है। और बालुरेत की शिवलिंग नर्मदा के तट पर बना करके रोज प्रतिदिन नर्मदा स्नान करते हैं और नर्मदा की बालुरेत की शिवलिंग बना करके इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। और जब करते करते आज 125,000 भी पूरे होने वाले हैं और आज उनकी उम्र के जो 5 वर्ष हैं वो भी पूरे होने वाले हैं। आज तो शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया है और महामृत्युंजय जप कर रहे हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। और उधर यमराज काल दंड लेकर के चल पड़े मार्कंडेय को लेने के लिए। और जैसे ही इधर 5 वर्ष पूरे हुए, याद रखना यहां आने से पहले जाने का रिजर्वेशन पहले हो जाता है, होता है कि नहीं होता? आने से पहले जाने का रिजर्वेशन पहले होता है। आज यमराज काल दंड लेकर के चल पड़े और इधर आज 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इधर भी इनका भी 125,000 का आखिरी ही मंत्र चल रहा है। यमराज ने आकर के मार्कंडेय का हाथ पकड़ा ले जाने के लिए और ये शिवलिंग को पकड़ करके वो 125,000 का आखिरी मंत्र बोल रहे हैं। और जैसे वो 125,000 का आखिरी मंत्र पूरा हुआ और उसी समय उस शिवलिंग को फाड़ करके देवादिदेव भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ भगवान। और आज भगवान महादेव ने यमराज से कहा कि आज मैं वरदान देता हूं मार्कंडेय को, इसने नर्मदा के तट पर मेरा 125,000 महामृत्युंजय जप किया है, नर्मदा की बालुरेत की शिवलिंग बना करके, तो मैं इसे वरदान देता हूं कि ये चिरंजीवी भव। तो आज ही मार्कंडेय मुनि 7 कल्प बीत चुके हैं, 7 बार ये पृथ्वी प्रलय काल में जा चुकी है, जलमग्न हो गई हैं, पर एक नर्मदा और दूसरे मार्कंडेय मुनि आज 7 कल्प के बाद भी जीवित हैं। तो इन्हीं मार्कंडेय मुनि ने कथा सुनाई है युधिष्ठिर जी महाराज। तो पहले श्रोता और वक्ता कौन हुए हैं? मार्कंडेय मुनि और युधिष्ठिर जी महाराज। दूसरे श्रोता और वक्ता हुए हैं वैशंपायन नाम के ऋषि और जनमेजय। जनमेजय को आप जानते हो, परीक्षित जी महाराज के पुत्र, जिन्होंने सर्प यज्ञ किया था। इन्होंने नर्मदा पुराण क्यों सुनी? क्या पाप किया था जिस पाप के कारण जनमेजय को नर्मदा पुराण सुननी पड़ी? तो कथा बड़ी सुंदर आई है कि जब समीघ ऋषि का श्राप लगा, किसको? परीक्षित। जंगल में गए तो वहां भूख और प्यास लगी, तो एक महात्मा के आश्रम पर पहुंच गए। भागवत की कथा में आती है कथा। एक महात्मा के आश्रम पर पहुंचे, जाकर के कहा, बाबा मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। वो समीक नाम के महात्मा तो समाधि लगा करके बैठे हैं। उन्होंने नहीं देखा कि कोई मेरे राज्य के राजा आए हैं। उस समय राजा परीक्षित ने जब आवाज दी, वो महात्मा नहीं उठे, तो वहीं पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो मरा हुआ सर्प उठा करके राजा परीक्षित ने समीघ ऋषि के गले में डाल दिया और समीघ ऋषि के गले में वो सर्प डाला और अपने नगर की ओर चल पड़े। पर जब समीप के पुत्र थे श्रृंगी, श्रृंगी को पता चला तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके गया है, मैं उस राजा को श्राप देता हूँ कि आज से सातवें दिन इसी सर्प का जो पूर्वज है तक्षक, वो आकर के उस राजा को दंश करेगा। और रोने लगे समीक महात्मा से लिपट गए इनके पुत्र श्रृंगी और रुदन कर रहे हैं, रोते हैं। पुत्र को रोते हुए देखा तो पिता की आंखें खुली, बेटे से पूछा क्यों रो रहा है? बोले पिताजी मैं इसलिए रो रहा हूँ, कोई राजा आया और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। पर धन्य है वे महात्मा, वे कहते हैं बेटा अरे हम तो महात्मा हैं, महात्मा की कोई अपेक्षा नहीं रहती, हमें कोई पुष्पों की माला पहना दे तो भी हम प्रसन्न, हमें कोई सर्पों की माला पहना दे तो भी हम प्रसन्न। पर श्रृंगी ने कहा मैंने उस राजा को श्राप दिया है कि आज से सातवें दिन उस राजा को तक्षक आकर के दंश करेगा। समीक ने सुना तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, बेटा तूने यह क्या किया, इतने से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, मृत्यु दंड, पर अब श्राप का मिथ्या हो नहीं सकता, तो आज अपने शिष्य गोरमुख को पहुंचाया है और जाकर के कहा कि जाओ परीक्षित से कहो कि वो सात दिन को व्यर्थ नहीं गवाएं, इनमें भगवान का भजन पूजन करें, अपना उद्धार करें। जब गौरमुख परीक्षित के पास पहुंचे हैं और परीक्षित से जाकर के कहा आपको श्राप लगा है हमारे गुरुपुत्र गौरमुख का, इसलिए आप घर का त्याग करो और भगवान का भजन करो, आपके पास केवल सात दिन हैं। परीक्षित तो मुस्कुरा पड़े। परीक्षित ने कहा अरे मैंने तो ऐसा पाप किया है जो मेरे पूर्वजों ने कभी नहीं किया, और मुझे सात दिन का श्राप नहीं देना था, मुझे तो तुरंत मृत्यु का श्राप देना था। पर परीक्षित समझ गए कि सात दिन तो है मेरे पास, ये तो कन्फर्म है, सात दिन से पहले तो मैं मर नहीं सकता। एक बात बताओ माताओं भैया लोग, हमें हमारे जीवन का कन्फर्म है क्या कि इतने वर्ष जिएंगे? बोलो, हमें अपने जीवन का भरोसा नहीं है। एक श्वास आए कि एक श्वास ना आए, को जब पता चला कि मेरे पिता को तक्षक ने आकर के दंश किया तो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को कहा कि मंत्र ऐसे उच्चारण करो कि सारे सर्प आकर के यज्ञ कुंड में स्वाहा होने लगे। अब देखो मंत्रों में वो शक्ति है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन।